सीमित थे, लेकिन अब उनको लग गया बहुत स्वाद, तो कहते और दीजिए। तो मैं कहा क्यों और मांग रहे हैं? अरे बहुत अच्छा है। मैं कहा और लोगों के लिए भी अच्छा है ना, केवल आपके लिए? और लोगों के लिए जहर है क्या? जब स्वाद स्वादिष्ट वस्तु है तो और लोगों के लिए भी स्वादिष्ट है ना, केवल आपके लिए स्वादिष्ट है? कुछ लोग ऐसे खाने वाले होते हैं उनको बस अच्छा लग जाना चाहिए, और ये विचार नहीं करते हैं कि दूसरे को भी अटेगा कि नहीं अटेगा, बस अच्छा लग जाना चाहिए। और दो और दो और दो, गिलास भर दो, कमंडल भर दो, बहुत विचार करना चाहिए उदार दृष्टि से कि भाई जब अच्छी वस्तु है तो सबके कंठ में साथ चला जाए, बल्कि जो खराब चीज है उसको हम ज्यादा खा लें। नहीं, एक बार की घटना है गोरखपुर की, भाई जी हरमन प्रसाद पुद्दार जी जब थे वहाँ, तो एक दिन उनके घर में लौकी की सब्जी बनी और तितकी लौकी, और बड़े सीनियर अतिथि आए थे उनके, बड़े बड़े लोग। तो जब खाने बैठे सबसे पहले भाई जी उस सब्जी को खाए तो तितकी लौकी का था। तब उस अभी वो लोग चालू नहीं किए तो कहे कि ऐसा काम करें, ये सब्जी मुझे बहुत पसंद है और मैं सब्जी ही खा करके रहूंगा, आप लोग आओ सब्जी ले लें, और सब्जी ले लीजिए काम चल जाएगा। तो बोलो आप एक व्यक्ति सब्जी खाने का आग्रह कर रहे हैं तो हाँ ठीक है ले लीजिए ले लीजिए। तो सब लोग दे दिए सब्जी तीन किलो, और भाई जी वहीं बैठे बैठे सब खाए, भाई तो रोटी नहीं खाए। तो वे जानते थे कि ये लोग खाएंगे तो इनका स्वाद बिगड़ जाएगा, बड़े दुखी होंगे, खा लिया। लेकिन बाद में बची हुई सब्जी को कोई खाया घर का आदमी, तो वो देखा कि जो तितकी लौकी थी, तो भाई आए करने लगे वो भाई जी तो सब तितकी लौकी खा गए ऐसे ऐसे। तो बहुत गदगद हुए सुन करके, अरे बाप रे बाप। तो इस प्रकार से जो कुछ खराब चीज हो, रूखा सूखा हो, वो खा ले, बाकी स्वादिष्ट चीज अधिक से अधिक भक्तों को दूसरों को बांटे। भक्तों को सीखना चाहिए। कभी कभी ने देखा कोई चीज दही अंत में चल जाए, दही स्वादिष्ट होता, अरे ले आओ ले आओ भात ले आओ आप। खाने की अपेक्षा खिलाने का ज्यादा महत्व है। तो यहाँ पर मैं इस बात को कह रहा हूँ, जैसे भगवान कह रहे हैं कि जब जब प्रियतम तस्य तस्य परिग्रह दुखाय, जो जो वस्तु किसी को प्रिय है उसका वो संग्रह करेगा तो उसके दुख का कारण होगा संग्रह, क्योंकि वो वस्तुएं ये वस्तुएं अन्य को भी प्रिय होती हैं और ये लोग उन वस्तुओं को लेना चाहते हैं बाय हुक और क्रूक एनी हाउ, किसी भी तरह से। जान मार करके मिले तो जान मार करके लेंगे, नहीं लाठी डंडा पीट करके देगा तो पीट करके लेंगे, नहीं ऐसे दे दिया तब भी लेंगे, तब भी वो दुख का कारण होता है। कोई बिना मारे पीटे आपसे वस्तु आ जाए लेने के लिए तो दे देने के बाद बहुत दुख होता है, हाय है इतने दिन से रखी हुई वस्तु चली गई। ले जाने के कोई मांगने आ जाए तब भी बहुत दुख होता है, और कोई न मांगने आवे तब भी भय बना रहता है कि हाँ अरे कोई ले न जाए, केवल दुख ही होता है, उसे कोई सुख नहीं होता। इसलिए संग्रह नहीं करना चाहिए बल्कि त्याग कर देना चाहिए। त्याग कर देने वाला अनंतम सुख आपने, जो अकिंचन है, जिसके पास न किंचन अकिंचन कुछ भी नहीं है वो है अकिंचन। अकिंचन वह है जिसके पास कुछ नहीं है, तब यह कहा जाएगा तब जितने दरिद्र हैं सब अकिंचन है ना, वह अकिंचन नहीं है। अकिंचन उसको कहते हैं कि जिसको सुविधा होते हुए भी भगवान की भक्ति में विकास करने के लिए छोड़ दिया है, उसको अकिंचन कहते हैं। और जिसको भोगों की लालसा है और कर्मानुसार नहीं जुट रहा है तो उसको दरिद्र कहते हैं। तो दरिद्र सुखी नहीं होता है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। लेकिन जैसा हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, बड़े बड़े राजा ज्ञानी लोग अपना राज्य वैभव छोड़ करके वन में चले गए, तो जब वे राज्य करते थे उस राज्य की अपेक्षा वनवास में उनको अधिक सुख मिलता था, इसलिए वे वन में चले जाते थे। इसको अकिंचन कहते हैं। तद विद्वान जो व्यक्ति जानता है कि परिग्रह में संग्रह में दुख है और त्याग में सुख है, वह व्यक्ति त्याग करके प्रिय वस्तुओं का त्याग करके परम सुखी होता है। ये सीखना चाहिए, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। सामिशम कुररम जघनु बलिनो ये निरामिषः तदामिशम परित्यज्य सुखम समबिन्दत। सामिशम माने मांस के टुकड़े के साथ। एक कुरर पक्षी था, वो सामिश था। सामिश मतलब मांस के साथ, उसके चोंच में मांस था। जब उसको देखे तो ये निरामिष बलिन, जिनके पास मांस का टुकड़ा नहीं था, वे चील और गिद्ध जो बड़े बलवान है आकाश में उड़ते हैं, वे लोग उसको मारने लगे। और वो समझ गया कि केवल मांस लेने के कारण मुझे मार रहे हैं, तो तदा मिशन परित्यज्य, तो उस मांस को गिरा दिया। तब सुखम समबिन्दत, तब वह त्यागी बहुत सुख पाया। स मतलब त्यागी, त्यागी कुरर। भोगी कुरर बहुत दुख पाते हैं, प्रिय वस्तु अपने पास रहती है तभी भी दुख पाते हैं, और बहुत कुछ संभावना रहती है कि कोई मारपीट करके या जान से मार करके ले लेगा। एक बार की बात है, जब सनातन गोस्वामी कारागृह से छूट करके चले, तो उनके साथ उनका सेवक चला था, तो वह अपने साथ 8 रुपया रख लिया था, सोने का मुहर, सोने की मुद्रा। इतने बड़े व्यक्ति हैं सनातन गोस्वामी, चल रहे हैं, तो कभी पथ में या कहीं भी इनके लिए सहारा होगा। वो उन्हीं के स्नेह से पैसा रखा था, लेकिन सनातन गोस्वामी को उसका पता नहीं था। तो ये आए, चले पथ में भाग करके रात के समय, तो एक जगह वे रात में आए, देखे एक बहुत सुंदर घर है जंगल में, तो रुकने की व्यवस्था है। वहां गए तो वहां का जो मालिक था उससे कहे, साधु वेश में रहता था, भाई हम यहाँ रात को रहना चाहते हैं, तो सवेरे हम जाएंगे जब अंधकार दूर होगा। तो वह व्यक्ति जिसका वो घर था, सनातन गोस्वामी का खूब आदर किया, खूब अच्छा से बिछाया, बेड उड सुलाया, खूब अच्छा से बात किया, कहा ठीक है ठीक, आप रुकिए, आपका घर है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो सनातन गोस्वामी तो राजमंत्री थे, राजा के यहाँ रहे थे, राजनीति में बड़े पटु थे, उनका मन संकित हो गया। उन्होंने सोचा कि इस व्यक्ति के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, मैंने इसको कुछ दिया नहीं, लिया नहीं, तो ये मेरा स्वागत इतना क्यों कर रहा है। अकस्मात कोई अनजान आदमी बहुत आदर करने लगे, तब छनक जाना चाहिए, छनक जाना और संकित होना। क्या बात है भाई, हमसे कोई संबंध नहीं है और फिर भी यह इतना आदर चालू किया। तो वो तो राजनीतिज्ञ थे, वो समझता है कि कुछ न कुछ घात में होगा, तो जो उससे बात न करके अपने नौकर से पूछे, तुम्हारे पास कुछ है क्या, तुम्हारे पास कुछ है? तो पहले तो वो कह दिया ना, वो समझ गया कि शायद इसको दे देंगे लेकर के, इसलिए वो कह दिया ना। तो कहा नहीं नहीं नहीं, ठीक से बोलो। कहा आखिर ये हम लोगों का इतना आदर क्यों कर रहा है, ठीक ठीक बोलो, तुम्हारे पास कुछ है? तो बताया कि हाँ 7 मोहर है, 1 मोहर और भी छिपा दिया, 7 है, तो कई 1000 रुपए का इस समय हो जाएगा। तो भाई वो तब तो इसी कारण से आदर कर रहा है ना, जल्दी इस पैसा को निकालो और उसको दे दे, कम से कम जान तो बच जाएगी। वो समझ गए कि रात में जान मारने वाला था इस पैसा के कारण, आदर करके ठहराया था रात में जान मारेगा। और उन्होंने कहा कि तुम जमराज और मृत्यु को साथ में लेकर चल रहे हो, बिना पैसे के वास्तव में मनुष्य चाहे तो दुनिया घूम करके आ जाएगा, लेकिन पैसा वाला कहीं भी मारा जा सकता है। किसी को पता लग जाए कि 1 लाख 2 लाख 4 लाख पैसा कोई लेकर के चला है तो जहाँ से चलेगा वहीं से जमराज उसके पीछे लग जाएगा, मृत्यु वास्तव में उसके साथ चलने लगेगी, कहीं भी मारा जाएगा पैसा लोग ले लेंगे। और बिना पैसे का कोई है कि जमराज अपने लोक में है उसके निकट नहीं है, तो कहेगा तुम अपने साथ मृत्यु और जमराज को लेकर के चल रहे हो, जल्दी जो तो साथ मुहर निकाल कर दिया। और ले जाकर सनातन गोस्वामी उस डाकू से कहे, हत्यारा से, कई लोगों को मारा था जंगल में, तो कहा कि ऐसा है कि हम आपको कुछ दान देना चाहते हैं, और चूंकि अब हम बाबा जी हो गए, त्यागी हो गए, इसलिए हमको पैसे की आवश्यकता नहीं है, तो मैं सोचता हूँ कि आपको पैसा दे दूं, आप इससे काम करेंगे, जैसे अतिथि सेवा कर रहे हैं आप कुछ करेंगे, तो आगे पैसा रख लीजिए। तो डाकू कहता है अच्छा किया, कम से कम जान मारने के पाप से मैं बच गया, नहीं तो मैं सोचा था तुम दोनों की हत्या करूंगा रात में और पैसा ले लूंगा। उसके पास एक ज्योतिषी रहता था, वही बता दिया कि उसके नौकर के पास 8 रुपया है, 8 मोहर है, तो वो बताया कि हमारे पास ऐसा आदमी है और उसने बता दिया कि उसके पास 8 मोहर है, अभी भी एक छिपाया है। हाँ वही बताया सनातन गोस्वामी को, उसके पास एक और है। खैर बहुत अच्छा हुआ हम हत्या करने से बच गए, हमको तो केवल पैसा से मतलब था, ठीक है। तो ये क्या कहता है, बड़ा प्रभावित हो गया सनातन गोस्वामी, कहा कि ले जाओ पैसा, कोई बात नहीं, स्वयं दे रहे हो तो हम छोड़ देते हैं। तो वो इतने दयालु हैं कि जान छोड़ दी, दूसरा पैसा रहेगा तो प्राण मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए आप इसको लीजिए। तो कहा ठीक है, रख लिया। सनातन गोस्वामी फिर नौकर से मिले, वही चले, रास्ते में आकर कहे कि तुम्हारे पास और भी पैसा है, सच सच बोलो, तो कहा कि एक है। उन्होंने कहा बस अभी हमारा साथ छोड़कर के लौटो, अभी लौटो, तुम कहीं भी जान मरवा दोगे, चलो हटो। उसको नहीं ले गए वृंदावन साथ में, और कुछ लोग लौट गया। इस तरह हमको क्या पता था कि तुम काल को साथ में लेकर चल रहे, ये बिल्कुल सत्य घटना है। तो प्रिय वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत दुख होता है, त्याग करने पर परम सुख होता है, कम से कम त्यागी को सन्यासी को तो इस तरह होना चाहिए। तो कुरर पक्षी को भगवान ने देखा था आकाश में इस तरह से मारे जाते हैं चोट से अन्य पक्षियों के द्वारा, जब वह मांस का टुकड़ा गिरा दे तब उसको कोई नहीं मारता था, तब सुखम समझी, तब जाकर उसको राहत मिली, सुखम माने राहत, कुछ दम लिया, नहीं तो भाग रहा था, लोग मार रहे थे। ये कुरर से शिक्षा मिलती है कि संग्रह नहीं करना चाहिए बल्कि त्याग करना चाहिए। अब अर्भक से शिक्षा सुनिए, बच्चा से, नमे मानव मानव स्तो स्तः शब्द है स्तो, नमे मानव मानव स्तो न चिंता गेह पुत्रिणाम, आत्म क्रीड़ा आत्मरतिर विचरा नहीं है बालवत। महाराज जदु ने उनसे कहा था पहले कि आप तो बिल्कुल अक्रिय हैं, उदासीन हैं, बड़े प्रसन्न हैं, सुखी हैं, आपको कोई चिंता नहीं है, तो कहते हाँ इस विषय में मेरा बच्चा गुरु है, बालक से मैं सीखा है। नमे माना वो मानव स्तर, मुझे मान और अपमान का बोध नहीं होता है, मैं विचार ही नहीं करता हूँ क्या मान है क्या अपमान है, वास्तव में मान या अपमान देहाभिमान के कारण होता है। देहाभिमान का अर्थ है देह को मैं मानना। जब कोई व्यक्ति देह को मैं मानता है और देह के अनुसार ही उसकी अभिमति कुछ संसारिक दृष्टि से विकसित होती है कि मैं यह व्यक्ति हूँ, इस जाति का हूँ, इतनी उम्र का हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना ये हूँ, तब वह मान और अपमान का बोध भी करने लगता है। परंतु बच्चे को मान अपमान का कोई बोध नहीं होता है। वह देह में रहता है लेकिन उसकी देहाभिमति बहुत कम डेवलप्ड रहती है, विकसित नहीं रहती। छोटा बच्चा है, उसको ये भाव नहीं कि मैं किस जाति का हूँ, क्या हूँ, और न तो उसको चिंता होती है किसी चीज की। घर में पड़ा रहता है, भोजन है कि नहीं है, आज घर में क्या काम होगा, घर छाना है, घर बनाना है, विवाह शादी तय करना है लड़के लड़के का, या खिचड़ी ले जाना है, बच्चों को बिल्कुल चिंता नहीं होती। निश्चिंत रहते हैं और मान अपमान से मुक्त रहते हैं। अगर एक छोटे से बच्चे को कोई गाली दे तो गाली का मतलब ही नहीं समझता है। जैसे मान लीजिए कोई पशु है, कुत्ता है चाहे गाय है, उसको जा करके कोई कहे अरे, अच्छा गाली दे, तो वो क्या समझते हैं? तो जो भाषा ही नहीं समझता है उससे मान अपमान का क्या बोध होगा? किसी बच्चे को आप कहिए कि तुम वोट में खड़ा हो जाओ, हम तुमको विधायक बनाना चाहते, वो जानता ही नहीं कि वोट का क्या मतलब है, विधायक का क्या मतलब है। कोई स्तुति करे, उसके किसी बच्चे को कह दे तुम तो प्रभुपाद जी जैसे भक्त हो, कोई मान का बोध नहीं करेगा। और इसी तरह से अपमान का बोध नहीं करेगा। देहाभिमान में वृद्धि के कारण मान अपमान का बोध होता है और बच्चा अभी बिल्कुल मुक्त होता है इस बात से। तो मैं एक बच्चे से सीखा हूँ, मुझे मान अपमान का बोध नहीं होता है। और गेह पुत्रीणाम या चिंता सा चिंता मम न, गेह पुत्रीणाम की गेह वताम और पुत्र वताम, घर वालों को, गृहस्थों को और पुत्र वालों को जो चिंता होती है वो चिंता हम में नहीं है। जैसे बच्चा है, बच्चा में चिंता नहीं और घर की चिंता होती है कि भाई मेरा घर सदा शुद्ध रहे, अच्छा रहे, मेरा पुत्र हमेशा जीवित रहे, पढ़े लिखे, उसका विवाह हो, ये हो, वो हो, दंड न हो, पुत्र की चिंता होती है ना। जब तक पुत्र नहीं होता है तब तक पुत्र हो जाए यह चिंता होती है, और पुत्र हो गया तो उसका, उसके पढ़ाने लिखाने, विवाह आदि की बात, कभी बीमार पड़ जाए तो उसके जोखिम की चिंता होती है, उसके स्वास्थ्य के लिए चिंता लगी रहती है। कहीं भी आदमी रहे पुत्र की चिंता लगी रहती है और घर की चिंता लगी रहती है। गेह चिंता और पुत्र चिंता, और भी गेह का अर्थ घर का काम धंधा। अब कोई व्यक्ति ऐसा होता है वो घर के काम धंधा बिलाता है, ये होता है, कुछ कर नहीं पाता है लेकिन चिंता करता रहता है, जहाँ भी सपना में भी। उस लोग सपना में भी अपने बेटा पर क्रोध करते हैं, किसी बात की चिंता करते रहते हैं। परंतु उसी घर में जो छोटा बच्चा है उसको कभी चिंता नहीं होती है कि कब कौन काम होगा, अब दौरी होगी, अब धान कूटा जाएगा, चावल आएगा, ये करो वो करो, लेन देन, केस मुकदमा, कुछ भी नहीं जानता है बच्चा। तो इस प्रकार मैंने बच्चे से सीखा, वास्तव में इस संसार में गेहवान को और पुत्रवान को बहुत चिंता होती है, एक जगह तो बताया गया है कि अगर बच्चा गुणवान हो जाए तो बहुत चिंता होती है, उसके सुख की चिंता होती है, वो मर जाए तो और दुख होता है, और कोई खराब पुत्र निकल गया है तो और जलना होता है। बहुत बहुत चिंता, चिंता से चतुराई घटे, चिंता बुद्धि को खा जाती है। इस संसार में निश्चिंत रहना सीखना चाहिए, तो इस विषय में बच्चा ही गुरु है। आत्म क्रीड़ा, मैं आत्मना भगवता सह क्रीड़ा मान, मैं भगवान के साथ ही खेलता, मतलब भगवान की लीलाओं के चिंतन में रहता है। आत्म क्रीड़ा और आत्म रति, मैं भगवान में ही संतुष्ट रहता हूँ, तृप्ति मुझको भगवान में है। पुष्यंति च रमंति च, इस तरह विचरा नहीं है, इस संसार में घूम रहा हूँ बालवत, बच्चा के समान में सुखी घूम रहा है। मैंने घर नहीं किया है और न मैंने बच्चा किया, न मेरे बाल बच्चे है, न घर है, न परिवार है, मैं बिल्कुल सुख से घूम रहा हूँ। समझ जाए घर वालों, घर वाले लोग और पुत्र वाले लोग तो खूब समझते हैं हमें कितनी चिंता लगी रहती है। इन बच्चे और बच्चे भी देखिए, यहाँ पर शाम को कीर्तन होता है तो बच्चे केवल खेलते हैं, और उसी समय सयाने लोग, बूढ़े लोग अपने दलान में बैठ करके कुछ चिंता में लगे। चिंता क्या है कि कल कैसे गुजारा होगा, आगे क्या होगा, केवल चिंता में ही जिंदगी बीत जाती। हम बच्चे से सीखे हैं चिंता नहीं करनी चाहिए। अब अगर कहते हैं कि द्वारे व चिंतया मुक्तौ परमानंद आप्लुतौ यो विमुग्धो जडो बालो यो गुणेभ्यः परम गतः। दो ही व्यक्ति संसार में चिंता से मुक्त हैं और परमानंद में निमग्न रहते हैं। एक तो एक नंबर का मूर्ख है और दूसरा प्रकृति के गुणों से पार भगवान को जो पा चुका है, भगवान को पा चुका है, उनके अनुभव में डूबा हुआ है वह, और एकदम बेवकूफ, दोनों ही सुखी है, बाकी बीच वाले तो दुखी है। यहाँ प्रश्न होगा कि अज्ञ और सर्वज्ञ में इस प्रकार का सादृश्य कैसे है। एक तरफ तो आप अज्ञ को रख रहे हैं, अज्ञ मतलब संसार के बारे में, भगवान के बारे में कुछ जानता ही नहीं, ये भी नहीं जानता है कि हमको एक दिन मरना है, उसे पता नहीं, तो वह सुखी है। और सर्वज्ञ सुखी है जो भगवान को पा चुका है,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे
हरे। दो ही सुखी है, एवं कह करके या कहेगा और लोग नहीं, दो चिंता मुक्त हो, चिंता से मुक्त है और परमानंद में डूबे हैं दो ही लोग। एक तो भगवान को जो पा चुके हैं प्रकृति से पार, यहाँ गुणेभ्य का था प्रकृति से पार, तीन गुण प्रकृति के हैं इसलिए प्रकृति के बदले गुणों का प्रयोग किया गया, जो गुणों से पार हो चुका है, गुणेभ्य परम गुणों से पार भगवान को पा चुका है, भगवान में जिसकी मति पूर्णतः निमग्न हो गई है, यह अर्थ है वह सुखी है इस संसार में। और नहीं तो दूसरा है कि एकदम जो बोका है, एकदम बुद्धू आदमी है, कुछ भी नहीं जानता है, वो सुखी है। प्रश्न होगा कि अज्ञ और सर्वज्ञ में इस तरह से एक कटघरी आप कैसे स्थापित कर रहे हैं। श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, ननु अज्ञ सर्वज्ञ किम सादृश्यम, तो उत्तर देते हैं नैश्चिंत्यम परम सुखम इत्यादि। चिंतया मुक्त, क्योंकि निश्चिंतता की दृष्टि से एक अज्ञ एक मूर्ख आदमी भी बिल्कुल सुखी है, निश्चिंत है और सुखी रहता है। इसकी एक तो विवेक से सुखी रहता है और एक अविवेक से सुखी रहता है। जैसे मान लीजिए वो एक व्यक्ति इतना मुग्ध है, विमुग्ध मतलब इतना मूढ़ है कि उसका विवाह नहीं हुआ है और वो जानता भी नहीं है कि विवाह का क्या मतलब होता है। मान लीजिए इतना मूर्ख है उसको पता ही नहीं कि विवाह का क्या मतलब होता है, न तो उसके मन में विवाह की इच्छा है, न पुत्र की इच्छा है और न तो और कोई नौकरी पाने की इच्छा है, बस कुछ खाने को मिला उसी में प्रसन्न, किसी चीज की जानकारी ही नहीं है कि उसको लालसा उत्पन्न होगी, उसको भूख लगी है और भोजन मिल गया उसी में परम तृप्त हो गया और कोई लालसा नहीं, क्योंकि आने की जानकारी ही नहीं है तो वह सुखी है और मरना भी है ये कभी सोचता ही नहीं, समाज भी उसको नहीं पूछेगा, उसको कहेगा नहीं कि तुम चिंता करो। जैसे जगभर जी तो सर्वज्ञ थे, ऐसे संसार में कुछ लोग देखे जाते हैं कि समाज के किसी काम के लायक नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वो हंसते रहते हैं, सुखी रहते हैं, बिल्कुल अज्ञ। क्लिश्यत अंतरितो जन, बीच वाला आदमी दुख भोगता है, न इधर का रहा न उधर का रहा। जो लोग भगवान का भजन चालू कर दिए हैं तो कभी कभी वो सुखी रहने के सोच सकते हैं, बल्कि एक धर्म नियम नहीं लिया होता तो ठीक रहता, अरे कृष्ण वालों से भेंट ही नहीं हुई होती तो हम भी एक अज्ञ जैसे रहते, भूले रहते और लोग जैसे दुनिया में सुखी है वैसे मैं भी रहता, तो ये फंस गया बीच में। इधर भी पता लग गया कि स्त्री पुत्र आदि के साथ कोई संबंध नहीं है और उधर भगवान को भी नहीं पाया वे लोग वास्तव में उस व्यक्ति से सुखी हैं, उनको पता ही नहीं है कि मरना है या दुख है संसार में, जो भी है सुख है, कोई दुख नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में कुछ लोग जलते हैं वियोग में, तो कहते हैं ओहो शुरू में ही प्रेम नहीं किया होता तो अच्छा होता, इस विरह में मरने के अपेक्षा शुरू से ही भेंट नहीं हुई होती। अब मान लीजिए देखिए वोट होता है मतदान होता है, कितने लोग मर जाते हैं उसमें, लेकिन गाय भैंस को क्या चिंता है कि वोट हो रहा है नहीं हो रहा है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, कुछ भी उनको इसमें मतलब। और कोई जीते तो न तो उनको कोई उसे उल्लास है, न कोई हारा तो कोई रोएंगे, इसको विमुग्ध कहते हैं। इस तरह से दो ही व्यक्ति भी संसार में सुखी हैं, चिंता से मुक्त हैं, ये मैंने बच्चा से सीखा, ये तो भगवान को पा गया है वो और नहीं तो बिल्कुल। तो बच्चे से मैं निश्चिंतता सीखा हूँ और आत्मरति, जैसे बच्चा आत्मक्रिय होता है, आपने कभी कभी बच्चे को देखा होगा अपने आप कुछ गाता रहता है खेलता रहता है, क्योंकि बच्चे ऐसे देखे जाते हैं ना, और लोग चिंता में रहते हैं हाय हु आय हु, लेकिन बच्चा अपना कुछ खेलता रहता है। और कभी वो छोटे बच्चे कुत्ता के बच्चे को उठा करके लेकर के चलते हैं, चाहे उनके मन में कोई भी भाव नहीं है कि कुकुर है छुआ गया मुझसे, एकदम अभेद दृष्टि से रखते हैं। हाँ, यह उनकी निश्चिंतता है वास्तव, और ये भाव नहीं है कि मैं इस जाति का हूँ उस जाति का हूँ छुआ छूते हो जाएगा बिल्कुल शुद्ध है वास्तव, और ये चिंता नहीं रहती है कि वो अब भोजन बन रहा है कि नहीं, घर में जरा देखो ये तेल है कि नहीं, लकड़ी है कि नहीं, नून है कि नहीं, बाजार जाना है या ये रेट देना है सरकार को खेत का पानी का इसका उसका, कुछ नहीं, अपने आप में मस्त रहते, उसको आत्मक्रीड कहते हैं, आत्म रहते हैं। इस विषय में बच्चा गुरु है। तो पुररो अर्भक, अब कुमारी मेरा गुरु है भगवान ये कह रहे हैं, तो क्वचित कुमारी त्वात्मानं वृणानां गृहमागतानां स्वनंतान अर्हयामास क्वापि जातेषु बंधुषु। एक बार की बात है, एक कुमारी से भगवान ने शिक्षा लिया है, तो उस शिक्षा को कहने के पहले उसका ख्याल कह रहे हैं, कथा छोटी सी है, कह रहे हैं। एक बार क्वचित किसी समय एक कुमारी कन्या थी, तो उसके घर पर कुछ लोग आए जिनको यहाँ देखनहरू कहते हैं, और देखनहरू नहीं बरछिया करने वाले आए। बिना भोजपुरी के काम चलता नहीं है, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। अब क्या कहा जाए, बरछिया के लिए क्या हिंदी शब्द है, गरीब घर तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो घर पर खेत पर चले गए थे, स्त्रियां भी, उसकी मम्मी भी और उसके पिताजी भी सब चले गए थे, क्वापी कहीं चले गए थे। एक भक्त लिखते हैं कि क्षेत्रा दो खेत आदि पर चले गए होंगे, जहाँ सामान लाने चले गए होंगे, चाहे खेत पर चले गए होंगे, वो लोग ये नहीं सोचे होंगे कि वो सवेरे ही आ जाएंगे। हो सकता है शाम को आने वाले होंगे, वो आ गए सवेरे, वर्षा करने वाले, लड़की को देखने वाले। तो वापिस जाते से बंधु, उसके बंधु मतलब माता पिता भाई वगैरह जो थे वे सब चले गए थे कहीं काम से। काम लग ही जाता है, अभी सोच रहे कि ये करना है करना है, तब तक कोई काम आ जाता है नया, इसलिए चला जाता, तो चले गए थे। तो स्वयं उस स्वयं ही तान अर्या मासा उन लोगों की सेवा की, स्वयं ही सेवा की। यहाँ सेवा का मतलब है कि तुरंत उठ कर आई, अपने सिर को ढके ढके लज्जा के साथ, और उनको पानी दी, फिर बैठने के लिए आसन दी, दरी चटाई जो कुछ था बिछाई, और बैठा करके अब सोची कि हमारे पिताजी के माँ के आने में देर होगी, और घर में चावल नहीं था, और यह हो सकता है चावल भी होगा तो उसको छाटना था, जो भी करना, इससे तो लगता है कि चावल नहीं था, धान था। तो धान था तो सोची कि माँ आकर के भोजन जब तक बनाएगी तो मैं कूट करके तैयार कर दूं कि काम आगे हो, तो कूटने लगी। आत्मानं वृणानं गृहमागतं, उसका विवाह करने के लिए, विवाह बिल्कुल निश्चित करने के लिए वो लोग आए थे। तो तेषां अव्यवहारार्थं, उनके अभी अवहार के लिए, अवहार में आहार के लिए, उनके भोजन के लिए वह रहति एकांत में शालिन अवघनम क्या। शाली धान का नाम है, चाहे सोना चुरू होगा, चाहे जो भी हो, चाहे शेर है, वो कूटने लगी। अवघनन क्या, अवघनन कर ले, कूटने लगी एकांत में। लेकिन और वो लोग द्वार पर बैठे हुए थे बाहर, जैसे हम लोगों के गांव में होता ही है, स्त्री भीतर रहती है द्वार होते है। तो कूटने लगी मुसल हाथ में लेकर के, और उखल में कूटने लगी, कूटने लगी। तो पहले से वो शंख की बहुत सी बाला पहनी थी, बलर चूड़ियां पहनी थी शंख के, तो वो कूट रहे थे, तो वे झंड से बज रहे थे, कूटने पर आवाज आ रही थी, तो चलाने में कूटने में। तो उसने सोचा कि वे लोग सुन लेंगे आवाज को, तो कहेंगे कि अरे दरिद्र का घर है, यहाँ चावल वावल नहीं है, तब कूट रही। इस ध्वनि को बड़ा निंदित माने, ऐसे वो घर एक संपन्न घर था, हमेशा इसको कूटना नहीं पड़ता था, लेकिन ऐसा समय आ गया कि बेचारी को कूटना पड़ा। तो उसने सोचा कि हमारा विवाह करने वाले जो देखनहरू लोग आए हैं, वो यही सोचेंगे कि इस घर में चावल वावल रहता नहीं है, इसीलिए तो अभी अभी कूट रही है। इसलिए उस लड़की ने क्या किया कि हाथ में से चूड़ी निकाल निकाल कर रखने लगी कि ज्यादा है इसलिए आवाज आ रही है, तो निकालते निकालते दो दो चूड़ी छोड़ दी। जब दो छोड़ी तो दो में भी संतन आवाज आ रही थी। बहुत चिड़िया थी तो बहुत आवाज आ रही थी, दो बची तो दो से भी आवाज आ रही थी, तो फिर एक एक निकाल दी। अब एक एक चूड़ी बच गई तो आवाज नहीं आ रही थी, अब चावल फूट लिया। तो इस पर भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने उससे ये सीखा कि वासे बहु नाम कलहो भवेद वार्ता। तो जब बहुत आदमी एक साथ रहते हैं तो कुछ न कुछ मतभेद तरक वितरक या मनमुटाव हो ही जाता है, बहुत लोग एक साथ रहते हैं। और दो आदमी भी रहते हैं तो कुछ न कुछ वार्ता बन बन चलती ही रहती है, कुछ न कुछ बोली होती रहती है, इसलिए अकेले ही घूमना चाहिए। भगवान ने शिक्षा लिया अकेले पर आवाज नहीं हो रही तो देखिए उसको श्लोक के द्वारा तेषाम व्यवहारार्थम शालीन रहसि पार्थिव अवघ्नंत्या प्रकोठस्था चक्रु शंखा स्वन महत। हे पार्थिव, हे पृथ्वीपते जदु महाराज, जब वह अपने आगंतुकों के स्वागत के लिए एकांत में धान कूटने लगी तो उसके प्रकोष्ठ में कलाइयों में स्थित जो बलय थे चूड़ियां थी वे बजने लगी, शंख की चूड़ियां थी। शंखा स्वनम महत बजने लगे, साथ तब जुगुप्सितम मत्वा, उसको बड़ा जुगुप्सित मानी, निंदित मानी कि इससे लोग यही कहेंगे कि दरिद्र का घर है ये है वह, तो बड़ी लज्जित हुई और दोनों हाथ में से एक एक चूड़ी निकालती थी। यहाँ गोभंज शब्द है तो गोभंज शब्द एक क्रिया के कई अर्थ होते हैं, तो देखने में लगता है कि फोड़ रही थी चूड़ियों को, लेकिन ऐसी बात नहीं, वैसा क्यों करेगी, निकाल निकाल करके रख रही थी, कम कर रही थी, कम करते करते दो बच गए, तो दो दो पाणी और रसे से एक एक हाथ में दो दो चूड़ियां रह गई। तो उभयो रप्य भूत घोष हो, जब दो चूड़ियां रह गई तब भी घोष हो रहा था, आवाज आ रही थी वो घनंत्या शंख, क्योंकि धान तो एक दो बार में कूटा नहीं जाएगा, कूटने में कम से कम आधा घंटा लगा होगा, तो उतने देर तक और दो चूड़ी भी रहे तब भी आवाज हो रही थी, इस शुरू की ही बात है। तब उसने क्या किया, तत्रा पे कम निर्भिदत, उसने से भी एक एक चूड़ी निकाल दिया, तो एक एक बच गई, तब अकस्मात ध्वनि न अभवत, तब एक चूड़ी से अब ध्वनि नहीं हो रही। ठीक है, ये तो कथा हो गई। भगवान कहते हैं अन्न शिक्षम इमं तस्या उपदेशम अरिंदमन। हे शत्रुओं का दमन करने वाले जदु महाराज, मैं उस कुमारी से यह सीखा, यह उपदेश लिया। क्या आगे बता रहे हैं आगे कि वासे बहु नाम कलहो भवेद वार्ता, तो ये मैंने सीखा, उसमें उपदेश लिया। जदु महाराज ने पूछा कि कुमारी के इस आचरण को और उसके धान कूटने को आप कैसे देख लिए। लोकन अनुचरण एता लोक तत्व विवेक सया, मैं लोगों के पास घुमा करता हूँ। क्यों घूमते हैं, लोक तत्व विवेक सया, लोक तत्व को देखने के लिए मैं घूमता हूँ, लोगों के व्यवहार से मैं हेय और उपादेय शिक्षा ग्रहण करने के लिए घूमता हूँ। कहीं कहीं लोगों को दुखी देखता हूँ तो सोचता हूँ ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं तो दुख होगा, और लोगों को कहीं कुछ देखता हूँ अनुकूल भाव से करते हैं कोई चीज तो सीखता हूँ कि ऐसे करना चाहिए। मैं इसी तरह से लोगों से सीखने के लिए है और उपाध्याय, संस्कृत में हा शब्द का अर्थ होता है त्याग छोड़ना, और है का अर्थ है त्याग नीचे, और आदान शब्द का अर्थ होता है लेना, प्रदान शब्द का अर्थ होता है देना। तो उप आदेय मतलब जो अच्छी तरह से ग्रहण करने लायक बात हो उसको उपादेय कहते हैं, त्याज्य बात को हे कहते हैं। तो मैं लोगों के पास घूमता रहता हूँ, ऐसे ही सीखता हूँ। तो घूमते घामते मैं वहां पहुंच गया था, उस कुमारी के घर पर देख रहा था तो दिन का समय था, तो भगवान दत्तात्रेय जैसे तो बेवकूफ जैसे पड़े होंगे, और धूत उन पर कौन केयर करता है, ऐसे भिकमंगा पागल कहीं भी घूमते रहते। तो जो देखनहरू आए थे वे भी भगवान को नहीं समझ पाए और कुमारी भी नहीं, लेकिन वे देख रहे थे।
और बाहर से बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे कि अब चूड़िया निकल रही है और धीरे धीरे एक दो बार झनझन आवाज हुई होगी, तब तक कब और इसके बाद नहीं हुई। और जहाँ तक मूसल की आवाज है वो निकलने नहीं दे रहे थे, धीरे धीरे कर रहे होंगे, वो नहीं सुनाई पड़ रहा है। जैसे धार धार ढेंकी चलती है खिचड़ी के अवसर पर, वैसे नहीं कूट रही थी, धीरे धीरे कूट रही थी, चूड़ी की आवाज बंद हो गई। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो विचार कर रहा था कि भगवान दत्तात्रेय जी कहाँ से देख रहे थे, घर के अंदर गए थे, हमको तो लगता है कि अंदर गए होंगे देखने के लिए। और वो बच्ची भी कुमारी भी ये नहीं सोची होगी, वो सोचे होगी बेचारा है बुद्धि का कम पागल आदमी है, बैठे कल बैठो बैठो भोजन देंगे बाद में। लेकिन भगवान को तो इसे सीखने की बात थी, उसे सीखे। तो यहाँ लोका अनुचरण ये तरह से भगवान यह कह रहे हैं कि सर्वज्ञ होने के कारण ऐसा नहीं है कि मैं केवल जान गया, देखा हूँ आँख से। वैसे तो मुझे देखने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ। लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि लोकानुचरण लोगों के पास जा जाकर लोक तत्व की विविधता में लेता हूँ, मुझे इच्छा होती देखने की, मैं देखा अपने आँख से। तो उस कुमारी के कंकर से मैं सीखा, कुमारी से नहीं, कुमारिया कंकर, कुमारी के उस कंगन से, चूड़ी से सीखा। क्या वासे बहुनाम कलह, बहुत लोग जब एक साथ रहते हैं तो कुछ न कुछ कलह होते है। जैसे रेलवे के सेकंड क्लास के जनरल दिखा है, अब तो आरक्षण में भी सब होने लगा कलह। बहुत लोग आते हैं तो कलह होता है। आप इतना सावधान रहिए भागवत की कथा सुनने में कि ये सब बातें प्राकृत धरातल की है, अप्राकृत बातों में ये सिद्धांत नहीं लगता है। भक्तों का एक साथ रहना यही शोभा की बात है। यह जन संसर्ग की बात कही जा रही है कि जहाँ हमारे मत से भिन्न साधु अथवा जनता हो तो वहाँ सबसे अच्छा है कि न जाए, एक भी हो तो उसे बात न करे। उस समय बस अकेले रहे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
और यदि भक्त हो तब तो भक्त के साथ तो झाल ढोलक बजे और जितना ध्वनि हो उतना ही अच्छा। चक्रवर्ती पाद जी इस पर लिखे हैं कि देखिए, ये कहते हैं कि अत्र जो कुमारी की बात की जा रही है तो वास्तव में कुछ पता नहीं लग रहा है कि वह बहुत धनी घर की है या गरीब घर की। अच्छा, तब चक्रवर्ती पाजी कहते हैं यदि वह धनी घर की होती तो चावल पहले से कूटा हुआ घर में होना चाहिए था। तो इतना गरीब, इतनी ही गरीब है वो लड़की कि अब अभी अभी उसका विवाह, उसके विवाह के लिए लोग आए हैं, उनके लिए कूटना पड़ता है। तो इसका मतलब है दरिद्रता कुमारी, बहुत दरिद्र की लड़की। तो दरिद्रता कुमारी अप्राप्त पति का, और उस पर भी एक तो दरिद्र की कुमारी थी और उस पर से भी उसका विवाह अभी नहीं हुआ था, अप्राप्त भर्तृका थी। तो झनत्कारा भावार्थम, चूड़ियों की झनकार का अभाव करने के लिए कि न झनकार करें, अपने चूड़ियों को दूर की अपने हाथ से निकाल करके। तो यहाँ पर सीखने की बात है कि कुमारी जो है वो ज्ञान योग का द्योतक है। ज्ञान योग, तो ज्ञान योग में क्या होता है, ज्ञान योग स्वाश्रितान मुनि निसंगा ने करोति, ज्ञान योग अपने आश्रित मुनियों को, मतलब ज्ञान योग का जो आश्रय लिए हैं उन मुनियों को निसंग करता है। एक मुनि को कहता है दूसरे मुनि के साथ मत रहो। लेकिन जो राजकुमारी है, दरिद्रता कुमारी के विपरीत राजकुमारी, राजकुमारी जब पतिमती होती है, पतिमती राजकुमारी पतिम अभिसरण जो पति का अनुसरण करती है, तो वह उस समय झड़क कारार कारा व्यर्थम, वो चाहती है कि चूड़ियों की झनकार हो हमारे हाथ में है ना, ये देखी हुई बात। एक विवाहिता स्त्री आज भी लोक में देखा है तो चाहती है कि काम धंधा करते समय कहीं भी आवाज हो, इसलिए बहुत बहुत चूड़ी लगाती है, वो चूड़ी निकालती नहीं है, तो आवाज चाहती है, और बल्कि बहुत बहुत कंकड़ों को बहुत बहुत चूड़ियों को पहनती है। तथा वह श्रीमती भक्ति देवी, ठीक इसी तरह से भक्ति देवी है, वो चाहती है स्वाश्रितान वैष्णवान, अपने आश्रित वैष्णवों को चाहती है कि सब एक साथ रहे, और मधुर नाम कीर्तन ध्वनि रसार्थम तान परस्पर संघिना एवं विधाते है। चाहती है भक्ति देवी कि भक्त सब मधुर कीर्तन करते हुए एक साथ रहे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे
हरे। ये ज्ञान योग वालों के लिए,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
ज्ञान योगी जो है उनके लिए है कि एक एक अलग हो जाओ, चलो हटो, निसंगिन असंगिक। और भक्ति देवी तो चाहती है कि जितना साधु एक साथ जुट जाए, फेस्टिवल हो, भागवत हो, और ये हो, गावे नाचे खूब एक साथ। तो दो अंतर हुआ ना, एक तरफ दरिद्रता कुमारी है और एक तरफ राजकुमारी पति वाली, तो चाहती बहुत बहुत चूड़ी पहनती है कि आवाज हो। बहुत चूड़ियाँ केवल हाथ की शोभा के लिए ही नहीं पहनी जाती है, वास्तव में आवाज के लिए भी पहनी जाती है कि आवाज हो। तनक तनक तन झनक चूड़ी की, देव कवि ने लिखा है रास लीला में, भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजा रहे थे तो बांसुरी की आवाज, नूपुर की आवाज, और भी देवताओं के बाजा बज रहे थे, गोपी जनों के चूड़ियों की आवाज इतनी सुंदर लग रही थी, क्या कहा जाए उस रासलीला में, बीच बीच में तनक तनक तन झनक चूड़ी। तो भक्तों की जहाँ तक बात है वहाँ तो आवाज ही चाहिए, और ज्ञानी लोग जो है उनको निकल कर कहा अलग 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 चुप 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 गुफा में इधर उधर जाओ, और वो अलग अलग होंगे तभी ठीक रहेगा, जहाँ बात करेंगे तो आंसर बात करेंगे, इसलिए वो लोग आपस में मिले ना। और भक्त जब जुटते हैं तब तो भगवान का नाम गुण कीर्तन होता है, मधुर मधुर झंकार होता है,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
देखा है कि भक्तों में अलग होने पर ही भजन नहीं होता है, और जब जुटते हैं एक साथ तो होने लगता है ना। कुछ लोग तो साथ आने पर ही मंगल आरती करते होंगे, आए नहीं फिर भी सुनते हैं ना, सुनते हैं जगते हैं, उतना लेट नहीं कर सकते जितना अकेले में करते हैं। तो हम लोग तो कुमारी के कंकड़ की तरह अलग अलग नहीं होना है, राजकुमारी के कंकड़ की तरह जुटना है एक जगह, जितना आवाज हो। भगवान ने कहा है नई कात मता में स्पृहयन्ति केचित् मत्पाद सेवा धीरता मदीहा, सभा जयंती मम पौरुषाणी। भक्त लोग एक जगह जुट करके और हमारा कीर्तन करते हैं, सब परस्पर मिल करके कीर्तन करते हैं। लेकिन भक्तों के लिए भी बात यह है, तब तो जब भक्तों को दैव जोग से कहीं असत्संग में रहना पड़े तो वास्ते बहुनाम कलह बहुत वार्ता दे रहे, तो बहुत बहुत लोगों के साथ न रहे, एक के भी साथ न रहे, अकेले ही जप करे, यह अर्थ है। अज्ञानियों के लिए तो हमेशा अकेले रहने का विधान, क्योंकि वो ब्रह्म है तो ब्रह्म तो दो है नहीं, दो ब्रह्म एक साथ कैसे रहेंगे। और बहुत ब्रह्म हो गए तो उल्टा चिमटा डंटा बस। और उसी मारपीट में कोई ब्रह्म भूत भी हो जाए। भक्तों को ये सीखने की आवश्यकता, वास्तव में जहाँ पर भगवान की वार्ता के अतिरिक्त और बात करने वाले लोग हो वहाँ से हट जाना चाहिए, अकेले रहना चाहिए। कुमारी के कंकर से मैंने ये सीखा, कंकर मैंने कंगन है चूड़ी। तो ये तो कुमारी गुरु के। और जो भगवान ने यह कहा है कि लोकान अनुचरण एक अनिता लोकान अनुचरण, मैं लोगों के पास घूम घूम करके सब ज्ञान लेता रहता हूँ, तो केवल कुमारी के प्रति ही भगवान ने नहीं कहा है, और उन्हें सबके प्रति ये समझ लेना चाहिए। वो देख देख कर कह रहे हैं, चंद्रमा को भी घटते बढ़ते हुए देख कर कहे होंगे, हवा को भी ऐसे अनुभव करके कह रहे हैं, सूर्य को देख कर किस तरह वर्षा कर रहे हैं, किस तरह गर्मी में सुखा रहे हैं, सब देख करके बोले। अब यह जो है लोकान अनुचरण अब सब जगह बैठेगा। अब सरकार से सीखिए, सर मन बार करने वाले से, बार बनाने वाले से सीखिए। मना एकत्र संयुज्या जिता श्वासो जिता सनः, वैराग्याभ्यास जोगे न ध्रियमाणा मतंद्रितः। चितै काग्रता द्वैता स्फूर्ति लक्षण समाधि हेतु इति सरकारा शिक्षितम इत्याह मनयति। सरकार मतलब बार बनाने वाला, स्वर को करने वाला, चित्त की एकाग्रता मतलब भगवान में ही चित्त लगा रहे, भगवान में केवल चित्त रहे और द्वैत की स्फूर्ति न हो, मतलब भगवान के अलावा प्रपंच में मन न लगे, ऐसी समाधि का हेतु, मतलब भगवान के अलावा अन्य जगह चित्त न जाए, भगवान में ही लगा रहे, यह मैंने बाण बनाने वाले से सीखा है। दो चीज सीखा, एक तो भगवान में चित्त का अभिनिवेश ये सीखा, और ठीक और दूसरा सीखा कि अन्य जगह चित्त न जाए, ये दो शिक्षा है। देखने में ये कहीं लग रहा है, जैसे मान लीजिए कोई कहे कि देर मत करो जल्दी करो, तो दोनों दो है रास्तों में। अगर यह कहा जाए कि शीघ्रम कुरु, शीघ्र करो जल्दी करो, तो मन को भगवान में रखना चाहिए और अन्य विषयों में नहीं जाने देना चाहिए, ये मैंने बाण बनाने वाले से सीखा है। पहले शिक्षा को कह रहे हैं एकत्र, मना एकत्र संयुज्यात, मन को एक जगह संयोजित करना चाहिए एकत्र, कहा ब्रह्मरी, आगे जब बात आएगी, ब्रह्म ने भगवान श्री कृष्ण में मन को एकाग्र करना चाहिए, भगवान में मन को एकाग्र करना चाहिए, मतलब उनके रूप में नक्ष सिख तक जो सुंदर रूप है या उनकी लीलाएं हैं गोवर्धन धारण आदि रासलीला आदि, या उनके भक्त वात्सल्य आदि गुण हैं उनका स्मरण करना, विविध प्रकार से उनके धाम का स्मरण करना, नाम का, इसको एकत्र करना, एक जगह मन को करना चाहिए। मना एकत्र संयुज्या, ये प्रश्न होगा कि मन कैसे एकाग्र होगा, मन तो श्वास के अधीन रहता है, तो कहते हैं जितासन, पहले आसन को जीत ले। भक्ति में बैठना सीखना है चितासन होना बहुत जरूरी है। भागवत में बारम्बार बात आई है चितासन। जितासन उसको कहते हैं जो कि एक आसन पर 3 घंटा बिना पैर बदले बैठ जाए, उस आसन की सिद्धि या जितासन को कहते हैं। कोई हाथ का सहारा नहीं लेना, मेरुदंड को सीधा रखना, पैर पर इस तरह से बैठ गए तो उसको जितासन कर। जितासन होकर के प्राणायाम करें, और प्राणायाम करने से मनोमल जलता है, मन की चंचलता दूर होती है, स्थिर होने लगता है। तब स्थिर मन को एकत्र संयुज भगवान में लगा। अच्छा, प्रश्न यह है कि मन तो भागता रहता है, मन भागता है इधर उधर किस चीज से? राग के कारण। जहाँ उसका राग है, लगाव है, वह भाग जाएगा। आप कुछ भी कहिए, किसी को कुछ भी उपदेश दीजिए, लेकिन मन जिसका जहाँ राग है वहाँ भाग जाता है। तो कहते उसको धरना चाहिए, धीरे मारा पकड़ना चाहिए उस मन को। कैसे पकड़ाएगा? वैराग्य, वैराग्य से पकड़ाएगा। जब राग के कारण भाग रहा है तो वैराग्य से पकड़ में आ ही जाएगा। वैराग्य से पकड़ में आ जाएगा इसका मतलब ये है कि जब राग नहीं रहेगा तो अपने आप शिथिल हो जाएगा, नहीं जाएगा विषयों में, चिंतन नहीं करेगा। प्राकृत वस्तुओं की हेयता का, तुच्छत्व का, तुच्छता का जब हम वर्णन करेंगे, विचार करेंगे, तब उनमें मन नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है, और भगवान में कैसे लगेगा? अभ्यास है ना, अभ्यास योग है ना, वैराग्य योग, अभ्यास योग। धीरे मानव का अर्थ है पकड़ करके रख देना। जब अभ्यास करेंगे, अभ्यास का अर्थ भगवान के लीला गान आदि का अभ्यास, तो उससे उनमें मन स्थिर हो जाएगा, विषयों में नहीं जाएगा, उसमें लग जाएगा, भगवान में लग जाएगा। यह किसी वस्तु का नाम नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसका संबंध आगे से है, कहां पर मन को एकाग्र करें। चित्त एकाग्रता द्वैता स्फूर्ति लक्षण समाधि हेतु इति सरकारत शिक्षित इत्यह मन इति तत्रोपाय महाजित इति आसन जय श्वास जय तस्य च जय श्वासाधीन मनो निश्चलम भवति ननु क्षणम निश्चलम सदपि मनो विषय वासनया यदि विक्षिप्येत सुसुप्तो सुसुप्तौ इव सर्वथा लिये तवा तदा किम। यह प्रश्न हो सकता है कि मान लीजिए क्षण भर के लिए मन निश्चल भी हो तो विषय वासना से तो कहीं न कहीं फिर भाग जाएगा, या सुसुप्ति में जैसे मन लीन हो जाता है वैसे जागृत अवस्था में भी लीन हो जाएगा, मतलब तंद्रा में चला जाएगा, तब क्या करे? है ना, जैसे यहाँ बैठे बैठे तंद्रा में चला जाता है, लीन हो जाता है, लय कहते हैं। लय का अर्थ है कि जो बात हो रही है चाहे बाहर दिखाई पड़ रहा है उसको न देखना न सुनना, उसको लय कहते हैं। और विक्षेप का अर्थ होता है कि मन कहीं भाग करके चिंतन कर रहा है। सुसुप्ति में मन शयन अवस्था में मन लय को प्राप्त हो जाता है, मुक्त नहीं होता है, लय हो जाता है उसका। उस समय ना वो कुछ सोचता है, न खाता है, न पीता है, न देखता है। स्वप्न काल में तो वो देखता है, जगा रहता है मन, लेकिन शयन काल में, गाढ़ निद्रा में मन लीन रहता है। तो यह प्रश्न होता है कि मान लीजिए हमने थोड़ा प्रयास करके मन को स्थिर किया भगवान ने, लेकिन जब विषय वासना मन में है अनादि काल से, तो विषय वासना के कारण मन तो भगवान से हटकर चला जाएगा दूसरी जगह, अथवा दूसरी जगह न जाकर के फिर लय को प्राप्त हो जाएगा। दो भय है ना,
वही होता है ना, कथा में लय हो जाता है।
हाँ, और नहीं तो कोई जगह रहता है, विक्षेप हो जाता है, लय चाहे विक्षेप हो गए तब क्या करें? प्राय भक्त लोग प्रश्न पूछा करते हैं कि कैसे मन भगवान में रहेगा। तो लय और विक्षेप दो विघ्न है मन को भगवान में लगाने में। उपाय बता रहे हैं वैराग्य की। वैराग्य अविक्षिप्य मानव और अभ्यास जोगे न लक्ष्य ध्रिय मानव स्त्री क्रिय मानव। वैराग्य के द्वारा मन में विक्षिप्त नहीं होता है, अब नहीं जाता है, राग के कारण मन इधर उधर जाता है। जैसे मान लीजिए किसी स्त्री का चिंतन मन कर रहा है तो क्यों जाता है, क्योंकि राग है। लेकिन जब उसके शरीर का वास्तविक स्वरूप समझे या स्वभाव या और सब कुछ और मन हट जाए तो इसको विराग कहेंगे। वैराग्य जहाँ होता है वहाँ मन नहीं जाता है, तो वैराग्य चाहिए। भगवान ने गीता में कहा है कि अभ्यास से और वैराग्य से मन बस में होता है। जहाँ वो जा रहा है वहाँ की असारता दुखमयता का तुरंत चिंतन किया जाए तो मन भागेगा उधर से। जैसे मान लीजिए एक बोतल में बहुत सुंदर पेय रखा हुआ है, रंग बहुत सुंदर है और कोई आदमी जा रहा है पीने के लिए, लेकिन तत्काल कोई कह दे कि अरे वह पॉइजन है, विष है, फिर आदमी वहां पीने के लिए नहीं जाएगा, बल्कि वो कहेगा कि जल्दी से जल्दी इसको जमीन में गाड़ो चाहे कहीं फेंको, कोई पी न ले। उसके वास्तविक स्वरूप का मन में स्फुरण होने लगा तो वहां से मन भागा हटा, इसको वैराग्य कहते। तो भगवान के अलावा जो भी वस्तुएं हैं यही संस्पर्श जब होगा, दुख योदय होते हैं, वे दुख के घर हैं और वहां से मन को